नई सूरत शुरू होती है तो क्या फील करते हैं? आपको फर्क लगता है एक सूरत से दूसरी सूरत पे जाने में? मौसम का बदलना, कोई मूड का बदलना, हालात का बदलना, ऐसे लगता है कि मुख्तलिफ सूरतें एक के बाद आती हैं तो उससे पढ़ने वाले का एक मूड भी चेंज हो जाता है। जो लोग रोज़ कुरान पढ़ते हैं वो यकीनन इसको एंजॉय करेंगे अगर वो समझते हों कि एक सूरत पढ़ते हुए इंसान थक जाता है, एक ही माहौल है, एक ही मूड है, फिर एकदम चेंज आ जाती है। तो ऐसे ही लगता है जैसे कभी किसी एक रिश्तेदार के घर जाएं, कभी दूसरे के। तो आइए देखते हैं कि सूरत साफात में हमारे लिए क्या है। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक से सूरत सुआफात शुरू करेंगे। चंद बातें सूरत के बारे में, फिर उसके बाद सबक के बारे में, और हम देखेंगे कि हम इसमें से अपने लिए क्या लें। सूरत सुआफात का बुनियादी थीम इताअत है, और इताअत के लिए फरिश्तों की मिसाल ली गई। सुआफात कहकर सूरत को शुरू किया गया और आगाज़ में ही फरिश्तों की बात करके ये बता दिया कि तुम हो तो इंसान लेकिन एतात फरिश्तों जैसी मतलूब है। दूसरा बुनियादी थीम सूरत सुआफात का है शिर्क फिल मलाइका, यानी मलाइका की सूरत में जो शिर्क फैला हुआ था मक्का वालों में उसको तब्दील करना। मक्की सूरत है, मक्की दौर के बिल्कुल आगाज़ की सूरतों में से लगती है। कुछ कहते हैं कि वो दौर था कि जब मुखालफत शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। मुशरिकीन के अकायद में एक खराबी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझना था, लिहाजा इस सूरत में इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा मिलेगा। कुछ अगर आप सूरत के बिल्कुल आगाज़ को देखें तो आपको कुरान पाक की कुछ और सूरतों से भी मिलता हुआ अंदाज़ दिखेगा। मसलन यहाँ सूरत का नाम क्या है? सौफात। बोलने में और लिखने में देख लीजिए। फिर इसी तरह सूरत ज़ारियात, 27वें पारे की सूरत, सूरत मुरसलात, नाजियात और आदियात। इन पांचों सूरतों का आगाज़ एक ही जैसा है और इसमें एक ही अंदाज़ से कसम खाई गई है, और बास कहते हैं कि इन पांचों में फरिश्तों ही की कुछ खूबियों का जिक्र है। ये अलग बात है कि साथ कुछ हवाओं को भी मुराद लेते हैं, कुछ और भी, लेकिन हम देखेंगे कि इस सूरत में छोटी छोटी आयात हैं, तकरीबन 184-182 आयतें, लेकिन बहुत जल्दी हो जाती हैं। एक लेसन में 70-80 आयात आमतौर पे हो जाती हैं, क्योंकि इसकी आयतों से भी हमें ये अंदाज़ होता है कि ये मक्का के इब्तदाई दौर की है। सूरत हिजर और सूरत शुरा से मिलता हुआ इसका अंदाज़ दिखता है। सौती हुसन बहुत है, यानी आप कह सकते हैं डिवाइन म्यूज़िक फील होगा आपको, और अल्लाह ताला हमें इस चीज़ का मौका देते हैं कि यकसानियत से उकताकर मुख्तलिफ सूरतों को मुख्तलिफ तरह से पढ़ें। जब लोग तिलावत सुनते हैं तो इसको महसूस करते होंगे कि हर सूरत के अंदर एक डिफरेंट अंदाज होता है। फिर उसके बाद इस सूरत के अंदर नबी सल्लम को मक्का वालों के हालात थे और उनकी जो कैफियत थी उस पर सब्र का हुक्म भी मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि हालात उस वक़्त भी शदीद हो चुके थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ इस सूरत में आप देखेंगी कि डिसिप्लिन का बहुत जिक्र है, बल्कि पूरी सूरत ही आपको यही मैसेज देगी कि अगर फरिश्ते कोई बड़ा काम कर रहे हैं या कायनात में जिसने भी कोई बड़ा काम किया, सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हुआ जब उसने खुद को ऑर्गेनाइज किया और दूसरों को ऑर्गेनाइज किया। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन के बगैर कोई काम दुनिया में आसान दर्जे पे नहीं होता। चल चलाओ का मामला हो सकता है, अल्लाह ताला सवाब भी दे सकते हैं, अजर भी दे सकते हैं। इसी तरह सूरह साफात की तफसीर में निसाई की एक रिवायत है अब्दुल्ला बिन उमर से कि रसूलुल्लाह हमें हल्की नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाते और आप हमें सूरह व साफात से नमाज पढ़ाते थे। ये हल्की नमाज है, 180 के करीब आयतें, तो हमारी तो कुल हो अल्लाह ही पूरी हो जाए तो हम कहते हैं हमें उससे प्यार ही बहुत है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब नमाज में मतलब समझ आ रहा होता है और अल्लाह ताला की तख्लीक पे गौर होता है और आयतों का मानी समझ आ रहा होता है तो फिर उनको पढ़ने का अंदाज़ भी कितना बदल जाता है। फिर इसी तरह इस सूरत में नबी सल्लम का जो मजाक उड़ाया गया उसका भी जिक्र है। बास फिल आखिरा, यानी मरने के बाद उठाए जाने की बात भी आपको मिलेगी। मक्का वालों पे जो अजाब उतरना था उसका जिक्र हम पढ़ेंगे आयत नंबर 171 से 179 में, और ये वो दौर था कि जब मुसलमानों की तरक्की और कामयाबी के दूर दूर तक असरात भी नहीं थे। ظلم و ستم بھی تھا، تین چوتھائی لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے تھے، اسی طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ بمشکل 40 سے 50 صحابہ تھے، بے بسی بھی تھی، زیادتیاں بھی برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس گروہ کو آنے والے وقت میں کتنی شہرت اور کتنی کامیابی ملے گی؟ اور یہ لوگ جو مکہ میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ اپنی موت مر جائیں گے۔ لیکن صرف 15-16 سال کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ فتح مکہ بھی ہوا اور کفار کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ ہم نے اپنے عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ اس صورت میں ہمیں انبیاء کرام کے قصے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ملیں گے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا قصہ، جو کہ اگلے سبق میں ہی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ کا اشارہ پاتے ہوئے اپنے اکھلوتے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کہ جن کو کہا اور انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور اصل میں کفار مکہ کو زج کیا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم سے تم تعلق جوڑتے ہو وہ تو اتنا فرما بردار تھا، تمہارا حال کیا ہو گیا؟ اور سورت کے آخری آیات میں ایک طرف تو مکہ والوں کے لیے ڈراوا اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہیں کہ آج حالات بہت تنگ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کامیابی تمہیں ہی ہوگی۔ پھر آج کے سبق میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم صف بنانا، صف بندی، آرگنائزیشن پہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد توحید کیا ہوتی ہے، اور توحید جب دل میں آتی ہے تو انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ انسان داعش کا ہے، شنوں کا بھگایا جانا، کہ جب وہ آج بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں کوئی خلل ڈلے تو کیسے اوپر سے شعلہ پڑتا ہے اور ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں بھی ہیں اس سبق میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اسی طرح جنت کی خوشخبریاں بھی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے لیے رزق معلوم کا وعدہ بھی ہے۔ پھر آج کے سبق میں ہم دو دوستوں کی کہانی بھی پڑھیں گے کہ جو ایک دوسرے سے دور ہو کر ایک جنت میں اور ایک جہنم میں پہنچ گیا، اور دونوں وہاں کس حالات کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب خالص کرتا ہے تو اللہ کے بندے کیسے اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے موجود ہوگی، اور جہنم کی تہ سے جو درخت نکلتا ہے جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے صورت کو لیتے ہیں۔ بہت سمپل صورت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر سنیں۔ یہ ساری صورتیں ہی اب حقیقت میں دل کے ساتھ سننے والی صورتیں ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اس میں میلوڈیس حسن ہے تو آپ نے ان کو سب چیزوں کو انشاءاللہ محسوس کرنا ہے کہ کس طرح قرآن خوبصورت طریقے سے اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی۔ تین چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کوئی بہت اہم بات کہنی ہو۔ تو مکہ والے جس شد و مد سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر رہے تھے، اتنے ہی یقین کے ساتھ یہی بات کہی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو الہ ایک ہی ہے۔ الہ ہوتا ہی ایک ہے، حقیقی الہ ایک اور تنہا۔ جھوٹے معبود، باطل، مجازی خدا جتنے مرضی بنا لو، لیکن اس تنہا کے ہاتھ میں ہے اس کائنات کا دور، زمانہ۔ اسی لیے ساری کائنات اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر جب بھی کوئی صورت اس طرح کے انداز سے شروع ہو کہ جس میں قسم ہو، تو اس کے بعد عموماً توحید، قیامت یا پھر جزا سزا کی بات ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ان قسموں میں کن چیزوں کی بات ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ بس صافاتی صفا سے کیا مراد ہے، یہاں کس کی قسم کھائی گئی؟ عام لوگوں کا ہے کہ فصافات، زاجرات اور تالیات، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے حکم کے انتظار میں صفے باندھے ہوئے ہیں، واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے ہیں، یعنی ڈانٹتے کس کو ہیں فرشتے؟ واعظ اور نصیحت کے طور پر، یا پھر بادلوں کو ڈانٹتے ہیں جب بادلوں کو کھینچ کے دوسری جگہ لینا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو وہاں ہاں کے لے جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے. یہ ایک معنی ہے اس کا، لیکن اس سے زیادہ معنی بھی پیش کیے گئے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ان صفات سے صرف فرشتے ہی مراد نہیں، بلکہ یہاں کچھ اور چیزیں بھی مراد لی گئیں. کیسے؟ پہلی بات یہ کہ صف باندھنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھتے ہیں، یعنی جہاد کرنے والے غازی، جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ باطل قوتوں پر بندش لگائیں، یعنی زاجرات ان کو ڈانٹیں، اور صف فارا ہوتے وقت مطلب ذکر اور تسبیح میں مشغول رہیں، یعنی وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، یہ ان کی صفات ہیں. تیسری ان کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد مسجدوں میں صف باندھ کر نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں. کس طرح شیطانی نظریات اور اعمال پر وہ ایک بندش عائد کرتے ہیں زاجرات کی صورت میں، اور ان کا پورا دھیان ذکر اور تلاوت پر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھ لیں تو ان سب میں میسج ایک ہی ہے، اور وہ کہہ کہ صف بندی، ڈسپلن، آرگنائز. یہ شروع کی 4 آیتوں میں عقیدہ توحید اتنا کھول کے بیان کر دیا کہ اس کے بعد ہر بندہ دین کا مزاج سمجھ سکتا ہے. لفظ صافات جو ہے نا، یہ صف سے نکلا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جماعت کو ایک خط پر استوار کرنا. جماعت سے مراد جمعیت بھی ہے، یعنی کچھ چیزوں کے گروہ کو ایک جگہ جمع کرنا. اب یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پھر معنی کیا ہوگا؟ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرشتوں کی یہ بات خود اسی صورت میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم بے شک صفیں باندھنے والے ہیں. حضرت ابن عباس، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صف باندھے اللہ کے حکم کو سننے کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی حکم ملتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں. ہم کیسے ہیں؟ پھر دوسری تفسیر جو اس میں نمازوں کی صفوں کی گئی، تو اس کے بھی اشارے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ملتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی صفوں پہ بہت بات کی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا، تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ کی جگہ نہیں چھوڑتے. اور آپ کہتے ہیں کہ صف بندی، صفوں کو سیدھا رکھنا، اس پر اتنی حدیثیں ہیں کہ اس کے اوپر ایک الگ سے پوری بک بن سکتی ہے. حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے، سیدھے رہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور حقیقت ہے کہ امت مسجد سے پنپتی ہے. مسجدوں کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہ پورے شہر اور محلے اور علاقے میں پھیل جاتی ہے. جب مسجدوں والوں کے دل نہ صاف ہوں، ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ وہ رہیں، تو دوسروں کو پھر وہ کہاں جانے کا حکم دیں گے؟ پھر وہ کس طرح اس دین کو لے کر آگے چلیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے. آپ اور میں یہاں کر نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بھی مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں خاص طور پہ صف کی بہت اہمیت ہے. پیچھے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور الحمدللہ نماز کی بک میں بھی آپ نے صف بندی کے مسائل پڑھے. ان چیزوں کے اوپر خود عمل کریں، آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی کریں گے. اگلی چیز جو اس میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے تدبیر. کائنات کے اندر اللہ نے جو اتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا نا، اس کی طرف اشارہ ہے. صافات، فرشتے ڈس آرگنائز نہیں ہیں، اللہ کی کوئی مخلوق ڈس آرگنائز نہیں ہے، ہوتا ہے تو صرف انسان ہی ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے. اور یہ جو دن میں 5 بار ہمیں مسجد میں لے جا کر کھڑا کیا جاتا ہے نا، اصل میں ہمیں اس میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اطاعت سکھائی جاتی ہے، نظم و ضبط ہو، سلیقہ ہو، ترتیب ہو. دین میں اللہ کو مطلوب ہے خوبصورتی، آرگنائزیشن، خوبصورتی سے. اور جب عبادت کے وقت انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اطاعت کے وقت اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. غیر مناسب، بکھرے ہوئے، الجھے ہوئے لوگ صرف بدنظمی پھیلاتے ہیں. اور اس کو ہم دین کے کام کے کرنے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب دین کا کام بے ڈھنگے طریقے سے ہم کرتے ہیں تو ہم ویسے ہی بن کے نکلتے ہیں. رولز کو فالو نہیں کرنا تو نہیں کرنا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج وہ لوگ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ ہم سے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہم نے ان ڈسپلنڈ اور رکھا ہے بیکار سا، کہ جی یہ کیا بات ہے. کسی کو سب بناتا دیکھ کے کہتے اس کو کیا ہو گیا، कि टाइम वेस्ट करता है, बल्कि कितनी शोएं मारते हैं घर आके, सबसे आखिर में थी आगे चली गई, सबसे पहले अपने फॉर्म फिल करके आ गई हूँ, जब सबमिट करा के आई हूँ। देखिए जो बंदा सफ में नहीं खड़ा होता, सफ से मुराद जब समझ गया ना, रूल्स को फॉलो नहीं करता, जो दूसरों के लिए रूल्स हैं वो मेरे लिए हैं। नंबर एक, उसमें अज्जी नहीं है, तकबर भरा हुआ है, उसके अंदर इतात नहीं है, वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो सिस्टम को खराब करेगा। एक तस्वीर किसी ने बहुत पहले दिखाई थी कि अमेरिका के सदर जो हैं वो एक आम सबवे जैसे कोई मैकडोनल्ड या बर्गर किंग्स कह लीजिए, तो उसकी लाइन में खड़े हैं जहां बाकी लोग खड़े हैं बर्गर लेने के इंतजार में। आगे भी लोग हैं, पीछे भी हैं, और वो भी अपनी जगह पे खड़े हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही जाके बर्गर 1-2 पाउंड का लेना है जैसे दूसरे लेंगे। अब ये तस्वीर हम मुसलमानों के मुंह पे तमाचा, कि आज छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर बंदा दूसरे का हक मारता हुआ दिखता है और खुशी महसूस करता है। यूं अंदर से गाड़ी निकाल के ले जाएंगे और बड़े खुश होंगे, देखा निकाल लिए, जहां गाड़ी नहीं रखने की जरूरत होती वहां ले जाते हैं, बाज मन चले रेड लाइट से आगे गुजर जाते हैं और फिर हॉर्न भी बजाते हैं कि हम कामयाब हैं। तो याद रखिए ये भेड़ चाल है, ये जंगल का कानून तो हो सकता है, एक मुसलमान मुल्क का कानून नहीं हो सकता। और जहां थोड़े से लोग रूल्स को नहीं मानते वहां पूरा सिस्टम खराब होता है। आप कितने भी रूल्स बना लें, कितने पेपर वर्क कर लें, अगर लोगों ने उनको मानना नहीं है तो क्या फायदा? फिर तो आप समझ लीजिए कि वो और भी वक्त ज़ाया हो गया उस काम के करने का। इसलिए इंसान इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेकर अमल का ये नुक्ता ले ले कि जिस हद तक मेरे से मुमकिन है मैंने ये करना है। फिर इसके बाद इन आयात में एक दो नुक्ते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कस्में खाने की तनाते से, तो वो क्या है कि अल्लाह ने कसम क्यों खाई? कसम तो हम इसलिए खाते हैं कि हम दूसरों को यकीन दिलाएं कि हम सच्चे हैं, तो क्या अल्लाह ताला को अपनी सच्चाई साबित करनी है? वो तो गनी है। तो इसका जवाब जो है अल-इतेकान में दिया है, जो उनके राइटर है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह को तो कसम खाने की जरूरत नहीं थी, मगर इसको जो शफकत और रहमत अपनी मखलूक पर है कि किसी तरह ये लोग हक को कबूल करें और अजाब से बच जाए, यानी अल्लाह को जरूरत नहीं, उसने कसम खाई तो हमारे लिए खाई है। ठीक है, फिर एक और सवाल ये है कि कसम तो अपने से बड़ी चीज की खाई जाती है, तो ये सारी चीजें जिनकी कसम खाई तो मखलूक है, तो अल्लाह ताला ने अपने से कम चीज की कसम क्यों खाई है? तो इसका जवाब यह है कि दुनिया में अल्लाह ताला से बड़ी कोई जात ही नहीं है, अल्लाह से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो उसकी तो कसम खाई नहीं जाएगी। अल्लाह ने यहां कसम हमारे लिए जो चीजें बड़ी हैं उस नाते से खाई है, ना कि अपने से बड़े या छोटे से। लैसा कमिस्लिही शैय़ुन, उसको छोटे बड़े की जात से अलग कर दीजिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि मखलूकात में से जिन चीजों की कसम खाई है ना, तो उनकी अजमत को बयान करना है। जैसे कुरान पाक में नबी सल्लम की उम्र की कसम आती है, पढ़ चुके हैं आप लोग, ला मरुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम या महून, कौम लूत के बारे में तज़किरा आया था। इसी तरह इब्ने मर्दविया में हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि अल्लाह ताला ने कोई मखलूक और कोई चीज दुनिया में रसूलुल्लाह की जात से ज्यादा मुअज्ज़ज़ और मुकर्रम नहीं पैदा की। यही वजह है कि कुरान पाक में नबी सल्लम और रसूल की जात की कसम नहीं खाई गई, सिर्फ आपकी उम्र की कसम खाई गई है। तो बहरहाल कसम खाकर अल्लाह उस चीज़ की अहमियत को याद दिलाते हैं। और आखिरी पारे, अब जितने आगे हम बढ़ते जाएंगे इसमें हमें बहुत सारी ऐसी कसमें दिखेंगी कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की ये चीज़ें दिखाता है। तो बाकी रह गई बात कि हम सब तो कसम नहीं खा सकते, अल्लाह जिसकी चाहे खा सकता है, लेकिन मखलूक की कसम हम नहीं खा सकते। रिवायत सुन लीजिए, हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह ताला का इख्तियार है कि वह अपनी मखलूकात में जिस चीज़ की चाहे कसम खा ले, मगर किसी दूसरे के लिए अल्लाह के सिवा की कसम खाना जायज़ नहीं है। अब कसमों के बाद ये बात कर दी कि तुम्हारा इलाह एक है और उसको मान जाओ, तो गोया कि फिर वही माहौल वापस आ जाइए मक्का का, कि जहां अल्लाह के नबी तौहीद की दावत दे रहे थे लेकिन लोग थे कि मान के नहीं देते थे। कभी आज मेरे और आपके सामने भी ऐसा हो तो हमें यही डिटर्मिनेशन शो करनी है जो कि अल्लाह के नबी की मौजूद थी। कौन से रब की बात की गई? इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा इलाह तो एक ही है। कौन सा? रब्बुस समावाती वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, जो मालिक है आसमानों और जमीन का और जो कुछ इन दोनों के माबैन और तमाम मशरिकों का। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन कहने की बजाय पहली बात है रब्बुस समावाती वल अर्द कहा गया, इसको एक साइड पे लिख लें। फिर उसके बाद रब्बु वमा बैनहुमा कह दिया गया, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान है। और तीसरी अल्लाह ताला को यहाँ जगह दी गई वो क्या दी गई? रब्बुल मशारिक, दोनों मशरिकों का रब है। यहाँ दोनों मशरिकों के बाद मगरिबों की जिक्र नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे जाके सूरत मारिज में फला उकसिमु बिरब्बिल मशारिकी वल मगारिब में मगरबों का भी जिक्र है, आयत 40 है उसकी। तो क्या पता चला कि अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहने की बजाय इन छोटी छोटी सारी चीज़ों को अलग अलग करके और ज़्यादा शिद्दत दिलवा दी कि आलमीन के अंदर क्या कुछ आता है। अब तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की तौहीद की जो निशानी आंखों में रची हुई है सूरह यासीन को पढ़ने के बाद, तो हम ऐसी आयतों को अब ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। वमा बैनहुमा को सोचिए, आसमानों को सोचिए, ज़मीनों को सोचिए, क्या वो ज़ात है, वो क्या बड़ा है। फिर यहाँ मशारिक क्यों कहा गया? इसलिए कि हर दिन सूरज मुख्तलिफ नुक्ते से तुलू होता है। आपको शायद अंदाज़ा ना हो लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो बुलंदी पे होती हैं तो सूरज के निकलने को लोग देखते हैं। तो सूरज गर्मी सर्दी में डिफरेंट जगहों से उतरता है। हमारी एक साथी थी तो उनके घर की खिड़की से सुबह पता चल जाता था। मैं वो खुद बताती थी पूरे साल वो ऑब्जर्व जब करती हैं तो कहती हैं कि जब फजर के बाद मैं आती तो आजकल मेरे किचन की खिड़की से सूरज निकलता हुआ दिखता है, कुछ महीनों के बाद लाउंज की खिड़की में, फिर इस तरह घूमते घूमते बाज़ दफ़ा पिछले रूम से खुलता है। तो पूरे साल में इस तरह से सूरज घूमता है। हर दिन हर मुल्क हर जगह का जो मशरक है वो फ़र्क है, इसलिए यहाँ मशारिक कहा गया। इसी तरह मशारिक है तो वहाँ मगारिब भी कहा गया। क्या वो निज़ाम चला रहा है और क्या हम उसके काम करेंगे, क्या हम उसकी बातें करेंगे। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह हमने क्या करने हैं तेरे काम, बस तू हमें सुरखरू करके दुनिया से वापस ले जा। हमने क्या करना है, हमारी क्या औकात है, नमाज तो हमारी सीधी नहीं है, बाकी काम हमने कहाँ करने हैं। तो असल बात यह है कि इंसान के दिल में अल्लाह की बड़ाई तारी हो, इंसान अपने आप को सबसे छोटा और अल्लाह को सबसे बड़ा मानेगा, फिर कुरान समझ आएगा, फिर इंसान को समझ आएगी कि नमाजों में सफ़े कैसी बनानी है, फिर अल्लाह के दीन के काम मिल के सफ़ों में कैसे करने हैं। सफ़ का छोटा सा इंतशार सारे काम को ख़राब कर देता है। दीन का काम करने वालों के दिलों में अगर छोटी सी भी खराबी आ जाती है उसका नुकसान सबसे ज़्यादा दीन को होता है। हर बंदा उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, बस दफ़ा एक इंसान की कोई कमी सारे सिस्टम को ख़राब करती है। तो हमारे लिए इन सारी चीज़ों में अमल ये है कि हम अपने आप को जिस हद तक अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला और उसके निज़ाम को मानने वाला बना सके बना लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी कमी बेशियों को दरगुजर करेगा। हम इस काम में लगे रहें और साथ ही साथ दुआएं करते रहे कि अल्लाह कस काम तो हो कोई नहीं ठीक रहा, बस ये है कि करने वालों की सफ़ों में खड़े तो हैं, इस सब से निकालना ना। हमारी एक साथी हैं तो उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है और वो बार बार कहती हैं जब शेयरिंग करें जब मौका, अल्लाह मुझे निकालना ना, अल्लाह मुझे खड़े रखना, अल्लाह मुझे पता है मुझे कुछ नहीं करना आता लेकिन तू मेरा नाम ना इधर से निकालना, मैंने इधर ही मरना है, मैंने इस नाम के साथ जाना है कि अल्लाह तेरा काम कर रही थी। वो खुद कहती हैं कि मुझे नहीं पता मैं सवाब के लिए करती हूँ क्या करती हूँ, बस अब मुझे पता कि ये मेरा काम है तो मैंने करना है। तो ये वो तड़प जब इंसान के दिल में लग जाती है ना तो फिर वो जाती छोटी छोटी बातों को बुनियाद नहीं बनाता। ये तो ऐसे ही कि जैसे मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ आप पढ़ने आते हैं तो मैं अपनी जात को बुनियाद बना के आपको मैं कहूँ जब मैं नहीं पढ़ा रही जाए मेरा नहीं दिल आपसे साफ, तो आपका नुकसान कम होगा मेरा ज्यादा होगा, आप किसी और से पढ़ लेंगे लेकिन मैं हो सकता है आप जैसे लोग ना पा सकूं। तो हमेशा अपनी जात से ऊपर उठे, शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वल्लाही बहुत बड़ा धोखा है। जब वो लोगों को दीन से दूर नहीं कर पाता ना तो फिर वो उनके दिलों में आके ऐसे ऐसे शकूक व शुबहात डालता है कि बाज़ दफ़ा इंसान उस काम को नेमत समझने की बजाय एक जहमत समझता है